تفسیر وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ جمع کرے گا، اور یہاں پر جو ہے وہ یہ کون سا دن مراد ہے اور کون جمع کرے گا؟ تو یہ ہے قیامت کا دن مراد ہے اور جمع کرنے والا ہے اللہ تعالی، اور ہم کی ضمیر آئی ہے کہ جس دن وہ سب کو جمع کرے گا، یعنی گویا کہ سب انسانوں کو جمع کرے گا. وہ کون سے انسان؟ متا بھی اور متی بھی، شرک کرنے والے بھی اور جن کو جو ہے وہ اپنا جھوٹا معبود یا فرضی معبود جو وہ سمجھا جاتا تھا. تو گویا کہ ہر طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ جمع کیا گا. جمیعاً مزید تاکید کے لیے آیا ہے کہ جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا. ثم یقول للملائکتی، پھر وہ فرشتوں سے پوچھے گا، اہاؤلائی ایاکم کانوا یعبدون، اہاؤلائی کیا یہ ہیں وہ لوگ، کیا یہ تھے وہ لوگ، ایاکم تمہاری ہی، کانوا وہ تھے، یعبدون عبادت کیا کرتے. آپ دیکھیے کہ قدیم زمانے سے لے کر آج تک ہر طرح کے لوگ، ہر دور کے لوگ، اور ہر دور کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جو کہ فرشتوں کو دیوی اور دیوتا قرار دے کر ان کی جو ہے وہ پوجا کرتے رہے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے، کیا تم ہی ان لوگوں کے معبود بنے ہوئے تھے؟ وہ بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسئلے کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، یعنی حال کو دریافت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہیں کہ جب یہ لوگ، اے فرشتوں تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، کیا تم ان کی عبادت سے راضی تھے؟ کیا تم بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ تمہاری عبادت کریں؟ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ تم ان کے معبود ہو اور یہ تمہاری پوجا کریں؟ کیا تم نے چاہا تھا کہ یہ تمہاری عبادت کریں؟ اہاؤلائی ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ ہیں وہ لوگ جو ہے یہاں پہ استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے، کیا یہ ہیں وہ لوگ، کیا یہی ہیں وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں؟ کیا تم نے ان کو کہا تھا، کیا تم نے ان کو یہ متعارف کروایا تھا، کیا تم راضی تھے جب یہ تمہارا شرک کیا کرتے تھے، تمہیں اللہ کے جو اختیارات ہیں اس میں یہ تمہیں اپنے ساتھ جو تھے وہ شامل کیا کرتے تھے؟ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو ہے لاجواب کرنے کے لیے مشرکین کو اصل میں لاجواب کیا جا رہا ہے، مشرکین کو لاجواب کرنے کے لیے فرشتوں سے جو ہے وہ سوال پوچھا جا رہا ہے. آپ پیچھے پڑھ چکی ہیں نا یہ بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا، انتا قلت للناس، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا، تیری ماں نے، تو نے، ہے نا؟ تو پیچھے آپ ایسی آیات جو ہیں وہ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالی جو ہیں وہ جو شرک کرنے والے ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، ان کو جو ہے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جن کو تم معبود سمجھتے ہو وہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے. اور پھر کیا ہے، قالو، فرشتے کہیں گے، جواب دیں گے، سبحانکا، پاک ہے آپ کی ذات، انتا ولینا، آپ ہیں ہمارے ولی. اب یہاں پہ انتا ولینا کہنا دراصل فرشتوں کا فریاد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے ولی ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے ہماری یہ مجال ہی کہاں کہ ہم کسی کو ایسا کہتے یا ہم ان کے شرک کرنے پہ راضی ہوتے. ہم نے کب کہا تھا آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے، من دونہم. یہاں پہ یہ جو دون استعمال ہوا ہے آپ کو پتہ ہے ذوی الاضداد میں سے ہے، یہاں مقابل کے مفہوم میں ہے کہ آپ ہمارے ولی ہیں، من دونہم، ان کے بجائے، یعنی یہ ہمارے کوئی دوست نہیں تھے. یہ جو ہے جو ہمیں پوچھتے رہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم ان کی طرف نہیں ہیں، من دون نہیں، ان کو چھوڑ کر، یعنی گویا کہ ان کی بجائے آپ ہمارے ولی ہیں. تو یہاں پہ من دون نہیں مقابل کے مفہوم میں آیا ہے. اب فرشتے اپنے رب سے استغاثہ کریں گے کہ ان ظالموں کے مقابلے میں جنہوں نے ہمیں اس جرم میں ملوث کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے مقابلے میں آپ ہمارے یار، ناصر، مولا، مرجع ہیں، हम बरी हैं इनकी इस तोहमत से जो ये शिर्क करते रहे। अंता वलीयुना मिन दूनहिम, मुकम्मल तौर पे ऐलान बरात है फरिश्तों का मुशरिकीन की जो है वो मुशरिकीन के रवैये से। बलकानु याबुदून अलजिन्ना, हमारी नहीं बल्कि ये तो जिन्नों की इबादत करते रहे। अक्सरहुम बिहिम मुमिनून, इनमें से अक्सर इन्हीं पर ईमान लाने वाले थे। अब आप देखिए, एक तरफ फरिश्ते जो हैं वो ऐलान बरात करते हैं शिर्क से और मुशरिकीन से, और दूसरी तरफ जो हैं वो क्या बताते हैं कि ये जिन्नों की इबादत किया करते थे। यानी इनका ये जो शिर्क करना था वो क्या था कि ये जो थे वो हमारे नाम पर शयातीन की असल में बंदगी करते थे। तो गोया के लात, मनात, उज्जा, इन्होंने बहुत से बुत बना लिए, और इसके अलावा इन्होंने जिन जो थे उन जिन्नात परस्ती की बीमारी में ये लोग जो थे वो मुब्तला थे। अक्सरियत इनकी जिन्नात परस्ती। तो आपको पता ही है कि मुशरिकीन जो थे वो क्या करते थे, जिन्हों की पूजा किया करते थे। और आप सूरत जिन में भी आप पढ़ेंगी मजीद इसकी तफसील। तो गोया के ये जो शैतीन थे, जो जिन थे, वो इनको बहकाते थे और ये उनके बहकावे में आते थे। और अक्सर हम बेहम मोमिनून, और इनमें से अक्सर इन्हीं पर जो थे वो ईमान लाए हुए थे। तो अल्लाह को छोड़कर इन्होंने जो है वो शिर्क करना शुरू कर दिया था। जैसे मसलन अहले मक्का का क्या हाल था, वो सफर करते किसी वादी में, किसी पहाड़ी इलाके में, किसी जंगल में जब जाते तो कहते थे कि इस इलाके के जिन की हम पनाह में आते हैं। और वो ये जब ऐलान करते थे तो ये समझते थे कि अभी नहीं, यहाँ पे कोई भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। तो यहां पर जो है क्या कहा जा रहा है कि ये जिन्हों का कहना मानते थे, उनकी इबादत करते थे। तो जिसका कहना माना जाए, इबादत का लफ्ज पूजा पाठ के मानी में भी इस्तेमाल होता है और अतात के मानी में भी इस्तेमाल होता है ना। तो अब क्या है कि ये उनके तरीकों पर चलते थे। पल यौम ला यमलिकु बादुकुम लिबादिन, बस आज के दिन यानी कयामत के दिन, उस वक्त जो है वो क्या होगा, ला यमलिकु, कोई ये मिल्क नहीं रखता। सो आज मालिक नहीं हो तुम बादुकुम लिबादिन नफ़ा नफ़ा वला दर्रा, तो तुम एक दूसरे के भले के और बुरे के, नफा के और नुकसान के तुम मालिक नहीं हो। यानी उस वक्त जो है अल्लाह ताला ये बात कहेंगे कि आज तुम में से कोई ना किसी को फायदा पहुंचा सकता है और ना ही नफा पहुंचा सकता है। जैसे मुशरिकीन को ये डर लगा रहता था ना कि अगर जिनों को हमने जिनों की पनाह ना मांगी तो फिर क्या होगा कि हमें ये नुकसान पहुंचा देंगे, है ना। तो उन्होंने जो अपने जो शिर्क किया करते थे, यहाँ पे तो खास तौर पे जैसे फरिश्तों का जिक्र है, फिर उसके बाद उन्होंने जिनों का जिक्र किया, तो जिनों से जिनों को भी वो खुदाई के इख्तियारात में अहले मक्का शरीक समझते थे। तो वो क्या समझते थे, वो क्यों ऐसा करते थे, वो कहते थे कि अगर हमने इनकी अतात ना की तो इससे हमें नुकसान होगा। अगर हमने जो अपने देवती देवी और देवता हैं इनके सामने चढ़ावे ना चढ़ाए तो हमें से नुकसान होगा, वो नाराज हो जाएंगे जिन, और फिर हमारे देवी और देवता और हमें नुकसान होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं आज का दिन, आज कंट्रोल हमारा है, आज हुकूमत हमारी है। तो आज क्या है, आज किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही नफा। तो इसके मानी क्या है कि अहले मक्का ने शिर्क क्यों किया, इसलिए कि वो समझते थे कि इनके जो झूठे माबूद हैं अल्लाह के यहां इनकी सिफारिश कर देंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारे जिन आज तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते, तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते, तुम्हारे लिए कुछ भी सिफारिश नहीं कर सकते। वनकुलू, और हम कह देंगे लिल्लज़ीन ज़लमू, उन लोगों से जिन्होंने जुल्म किया, ज़ूकू अज़ाब अन्नारी, चखो आग का अजाब। और यहां पे आग के अजाब से मुराद क्या है, जहन्नुम का अजाब, अजाब जहन्नुम तुम चखो। अल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, वो अजाब जिसको तुम झुटलाया करते थे कि जब तुम्हें हमारे पैगंबर ने आखरत का बताया, जहन्नुम से तुम्हें डराया, वो नजीर बनकर आया, तो तुमने जुल्म अजीम किया, तुमने इनकार किया। तो आज अपने इनकार की पदाश में जो है झुटलाने के जो नुकसान है उसमें तुम जहन्नुम का मजा चखो। तो यहाँ पे झूठ बोलना नहीं है, तकजीब करना है, बार बार झुठलाना। वाइजा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब इन्हें सुनाई जाती थी हमारी आयात, और आयात भी कैसी, बय्यनातिन, खुली खुली, साफ साफ। कालू, तो ये कहते, मा हाजा, नहीं है ये, अब जो है हाजा ये रसूल के लिए आया है, पीछे आप कुरान के लिए पढ़ चुकी है ना, तो मा हाजा नहीं है ये रसूल, इल्ला रजुलुन, मगर एक आदमी, युरीदु, ये चाहता है, अय्यसुद्दकुम, कि ये क्या चाहता है कि तुम्हें रोक दे, अय्यसुद्दकुम, ये चाहता है कि तुम्हें जो है वो मना कर दे, तुम्हें रोक दे, अम्मा उस चीज से, काना थे, याबुदू, इबादत करते, आबाओकुम, तुम्हारे बाप दादा, कि ये शख्स बस सिर्फ ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारे उन माबूदों से रोक दे जिनकी इबादत तुम्हारे बाप दादा करते रहे। तो यहां पे अय्यसुद्दकुम, अम्मा, अम्मा से मुराद क्या है, वो माबूद उनके, वो जो उनके लात उज्जा मनात देवी देवता या जिन या वो जो रस्म और रवाज और जो कुछ भी उनके झूठे मफरूजे थे, तो ये रसूल जो है तुम्हें तुम्हारे अबाउ अजदाद के रास्ते से रोकना चाहता है, जिनकी इबादत तुम्हारे बड़े बूढ़े करते रहे उनसे ये रसूल बस रोकना चाहता है, इसका और कोई मकसद नहीं है। वकालू, और वो कहते हैं, मा हाजा, नहीं है ये, यहाँ पे जो हाजा आया है ये कुरान के लिए आया है, नहीं है ये इल्ला मगर इफ्कु मुफ्तरन, एक झूठ है घड़ा हुआ। इसका मतलब क्या होता है, बात को उलट कर देना, जैसे छत आपके ऊपर है, छत को नीचे कर दिया जाए और जमीन को ऊपर कर दिया जाए, है ना, बिल्कुल उल्टा बात को कर देना। तो और मुफ्तरा, इसके मानी क्या है, चमड़े का काटना उसको खराब करने के लिए, है ना, तो इसी से घड़ी घड़ी हुई बात के लिए, तो ये एक झूठ है घड़ा हुआ। तो कुरान को वो कहते थे ये एक झूठ है, और रसूल को कहते थे कि ये जो अबाउ अजदाद के रास्ता है उससे रोकना चाहता है। वकाल अल्लज़ीना, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कफरू, कुफर किया, लिल हक की, हक के बारे में, लाम यहाँ पे फी के मानी में है और हक से मुराद कुरान है, तो कुफर करने वालों ने कुरान के बारे में कहा, लम्मा जाअहुम, जब वो उनके पास आया, इन हाजा इल्ला सिहर मुबीन, कहा कि ये तो सरीह जादू है। तो आप देख लीजिए कि कुरान जो अल्लाह ने हक बनाकर पेश किया, और इन्होंने कुरान को जो है वो कुफारे मक्का ने जादू कह दिया। अब आप देखें कि एक आयत में, 43 नंबर जो आयत है, इसमें मा हाजा इन हाजा, कितना अंदाज था उनका तहकीर का, कितना अंदाज था उनका हकारत का। ये जैसे आप किसी चीज को जब ना माने और इंसान उसकी हकारत, उसके बारे में हकारत का उसका अंदाज हो, तो ये अब आप देखें कि रसूल के बारे में जो अल्लाह का एम्बेसिडर है वो कहते हैं, मा हाजा इल्ला रजुल, ये नहीं मानते कि वो रसूल है, और कुरान के बारे में कहते हैं, मा हाजा इल्ला इसको मुफ्तरन, और क्या कहते हैं, जो अल्लाह ने हक भेज दिया, अल्लाह हक, रसूल हक, कुरान हक, अल्लाह ने भेज दिया, और जब वो आ गया इनके पास कदर करने की बजाय, इन हाजा इल्ला सेहरु मुबीन, उन्होंने कहा ये तो सरी जादू है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो क्या कहते हैं, वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन, और नहीं दी हमने इनको, मिन कुतुबिन किताबें, कुतुब किताब की जमा है, और लिखी हुई चीज को कहते हैं, कि हमने इससे पहले इन लोगों को, अहले मक्का को, कोई किताब नहीं दी थी, यद रुसूना, जिसे ये पढ़ते हो, जिसे ये मक्का में रहने वाले पढ़ते हो, वमा अरसलना इलेहिम, और नहीं भेजा था हमने इनमें कबला का, इससे पहले, मिन नजीर, कोई डराने वाला, के अहले मक्का के पास इससे पहले ना तो कोई किताब अल्लाह की तरफ से आई और ना ही कोई ऐसा रसूल आया जिसने आकर उनको ये तालीम दी हो कि अल्लाह के सिवा दूसरों की बंदगी करें, है ना। तो किस बिना पर इन्होंने जो है वो कुरान और मोहम्मद का इनकार किया, जब कुरान और मोहम्मद ने तौहीद की दावत पेश की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कोई किताब ऐसी नहीं भेजी, कोई रसूल ऐसा नहीं भेजा जो इससे पहले आया हो और उन्होंने आकर इसको शिर्क की, इनको शिर्क करने की दावत दी हो। वकज्जब अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और ये झुटला चुके हैं। वकज्जबा और झुटलाया अल्लज़ीना, उन लोगों ने मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले हैं। और कौन से लोग हैं जो इससे पहले हैं और जिन्होंने जो है वो झुटला दिया, और इससे मुराद हैं कौन से लोग, कौम आद, कौम समूद, बहुत से लोग हैं जो इससे पहले झुटला चुके हैं रसूलों को और किताबों को, है ना। और आप देखें कि पीछे जो आयत 44 है उसमें कुतुबिन के साथ यद रसूना का जिक्र भी है कि कोई किताब नहीं जिसको पढ़ते पढ़ाते, इल्म कोई नहीं है, जहालत है, इसकी बिना पे शिर्क कर रहे हैं और इसके बाद जो है वो रसूल का इनकार कर रहे हैं। और पहली कौमें भी ऐसे ही करती रही हैं, इनसे पहले भी लोग ऐसा कर चुके। वमा बलगू, और ये नहीं पहुंचे, में इशारा, में इशार को, मा आतैना हम, जो हमने उनको दिया था। अब आप देखें कि जो पिछली कौमें थी ये उनके मेशार को भी नहीं पहुंचे। तो मेशार जो है इसके मानी क्या है, इसका रूट क्या है, ऐन शीन रा, और इसके तीन मानी हैं, इसके तीन मानी हैं। और आप ये बात याद रखें कि आपने जो है वो गिनती के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, अदद और मादूद, तो 10 को क्या कहते हैं, अशरा कहते हैं। और गिनती जो है कैसी होती है, कभी तरतीबी गिनती होती है, जैसे अव्वल है, सानी है, सालिस, राबे, ये तरतीबी गिनती होती है, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा। कभी गिनती जो है वो आती है निस्बत के लिहाज से, निस्बती, निस्बत बढ़ाने के लिए, जिसमें फुरादा और मसना ये फुआल के वजन पर होती है, फिर रुबाई चार चार वाला, है ना। जैसे अब आयत अभी 46 में आप पढ़ेंगी, मसना व फुरादा, तो मसना क्या है, दो दो, और फुरादा क्या है, एक एक। तो ये गिनती क्या है कि ये फुआल के वजन पर आती है, और एक एक, दो दो, तीन तीन। अच्छा, कभी गिनती जो है वो वैसे ही आम तौर पे जैसे गिनती होती है, वाहिद इस्नैन सलासा तलासा, है ना, सलासा अरबा। अच्छा, यहां पे जो मेशार है ये कसरी गिनती है, एक चीज के बटे हुए हिस्से, जैसे आधे के लिए तो निस्फ आता है, फिर इसके बाद फोल उनके वजन पर आता है, ये 10 तक गिनती। मसलन सुलुस, सुदुस, आप सूरत निसा में जहां पे विरासत की तकसीम आपने पढ़ी ना, वहां इसको आप पढ़ चुकी हैं। तो उशर जो है वो 10वें हिस्से को कहते हैं, यानी गोया के कोई चीजें, जैसे मसलन 10 सेब हैं, 10 सेबों में से जो एक है ना उसके लिए, जैसे 1/10, तो एक सेब को आप कहेंगे 10वां हिस्सा। तो उशर जो है, उशर भी कहते हैं और मेशार भी कहते हैं, मेशार 10वें हिस्से को उशर भी कहते हैं और मेशार भी कहते हैं। तो एक इसके मानी है 10वां हिस्सा। दूसरे इसके मानी मुफस्सरीन ने ये किए कि अशरुल अशर, अब देखें कि 1/10 तो ये है कि 10 में से एक 10वां हिस्सा, और अशरुल अशर जो है वो क्या है, 100 में से 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा। अशरुल अशर जो है, दूसरे मानी मुफस्सरीन ने ये किए के 100वां हिस्सा, और तीसरे मानी मुफस्सरीन ने ये किए कि अशरुल अशीर, और अशीर को उन्होंने क्या कहा कि 1000वां हिस्सा, अशरुल अशीर 1000वां हिस्सा। वमा बलगू में इशारा, और ये लोग तो, ये जो अहले मक्का हैं, ये पिछली कौमों के अशरे अशीर को भी नहीं पहुंचे, उशरे अशीर को भी नहीं पहुंचे, मा आतैना हम, जो हमने उनको दिया था। जैसे पिछली कौमे, कौमे आद, कौमे समूद, कौमे फिरौन है, कौमे शोएब है, अभी ये सबा का जिक्र आप अभी पढ़ रही हैं, तो इन कौमों को अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया था, तो ये लोग तो उसके जो है वो 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे, 100वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे, 1000वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे। और किस चीज का हिस्सा, इस सिलसिले में مثلاً پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جتنی عمر دی تھی تو ان کی تو عمریں بہت تھوڑی ہیں. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے 100 سال سمجھایا لوگوں کو, 50 کم 1000, تو عوام کی عمر پھر کتنی ہوگی, ہے نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ پہاڑوں کو تراشنا, سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا کہ قدور الراسیات دیگیں تھیں پہاڑوں کے اندر جیسے جمائی ہوئی جمی ہوئی, بڑی بڑی دیگیں کل جواب حوض کی طرح کے لگن تھے ان کے, نا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قوت دولت شجاعت بہادری قلعے سنت و حرفت زراعت تجارت جن چیزوں میں اللہ نے ان کو برتری دی تھی, اہل مکہ تم ان کے 10ویں 100ویں اور 1000ویں سے تک بھی نہیں پہنچے اور تم انکار کرتے ہو. اور گویا کہ پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے, جو کچھ ہم نے دیا تھا اہل مکہ تو اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچے, 10ویں 100ویں اور 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. فقط زبور رسولی, اور انہوں نے جب میرے رسولوں کو جھٹلایا تو پھر ہوا کیا, فکیف کان نکیر, تو پھر کیسی سخت تھی میری سزا. اصل میں نکیری تھا, یا حرف علت ہے گر چکا ہے, تو نکیر جو ہے جیسے منکر نکیر نہیں ہے پکڑ دکڑ کرنے والے فرشتے, تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب انہوں نے انکار کیا تو میرے عذاب کا کوڑا برسا اور ایسا عذاب ان کو آیا کہ پھر جو ہے وہ دنیا میں ایک لمحہ بھی رک نہ سکے, ایک لمحہ کے لیے بھی جی نہ سکے. فکیف کان عذابی و نکر, پیچھے بھی آ پڑ چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا تو بڑا سخت تھا اللہ کا عذاب. ان کی دولت, ان کی قوت, ان کی اولاد, ان کا مال, ان کے کچھ کام بھی نہ آ سکا. تو اصل بات کیا ہے, اپنے اعمال جو ہیں ان کو بہتر کرو, اپنے رویے جو ہیں وہ ان کو ٹھیک کرو تاکہ جو ہے وہ اللہ کی پکڑ جو ہے اس سے بچ سکو. تو توحید کا انکار, رسول کا انکار, قرآن کا انکار. تو میری پیاری بہنوں, کیا عمل کا اصول نکلا کہ قرآن میرے اور آپ کے لیے ایک دولت ہے. قرآن جیسے ہیرا نہیں ہوتا, کتنا نادان ہے ایسا شخص کہ وہ ہیروں کی بجائے جو ہے وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر سیپ جمع کرتا رہے, کوئلوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اپنی جھولی اپنے دامن اپنے چہرے کو کالا کرتا رہے اور سنگریزے جمع کرتا رہے اور قرآن کی آیتیں ان کو جو ہے اپنے دل دماغ اور اپنے عملوں میں جگہ ہی نہ دے. تو آئیے میں اور آپ مل کر قرآن کی قدر کریں, پیارے رسول کی قدر کریں, ان کی سنت ان کا اسوہ اس کو اپنائیں. وہ میرے اور آپ کے لیے اسوۃن حسنۃن ہے, بہترین نمونہ ہے, اسوۃن حسنۃن بہترین نمونہ. تو یہ آیات بتا رہی ہیں کہ عقائد مضبوط کیجئے, توحید اختیار کیجئے, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کی اطاعت کیجئے, رسول سے محبت ہے تو رسول کی پیروی کیجئے, آخرت پر یقین ہے تو آخرت کی تیاری کیجئے, اور قرآن پر اگر ایمان ہے تو سورت فاتح سے لے کر الناس تک جو جو اللہ کا حکم آتا چلا جائے اس کے آگے دل دماغ سر جسم سب کچھ جھکاتے چلے جائیے. آئیے اطاعت گزار بن جائیں, آئیے اللہ کے پسندیدہ بن جائیں. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی.